मत्ती की मार्फत इंजील बाब 15। फिर कुछ फरीसी और शरीयत के आलिम यरूशलेम से आकर ईसा से पूछने लगे, आपके शागिर्द बाप दादे की रवायत क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि वह हाथ धोए बगैर रोटी खाते हैं। ईसा ने जवाब दिया, और तुम अपनी रवायत की खातिर अल्लाह का हुक्म क्यों तोड़ते हो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो अपने बाप या माँ पर लानत करे उसे सजाए मौत दी जाए। लेकिन जब कोई अपने वालिदैन से कहे, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैंने मन्नत मानी है कि जो कुछ मुझे आपको देना था वो अल्लाह के लिए वक्फ है, तो तुम उसे जायज़ करार देते हो। यूँ तुम कहते हो कि उसे अपने माँ बाप की इज्जत करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह तुम अल्लाह के कलाम को अपनी रवायत की खातिर मंसूख कर लेते हो। रियाकारों, यशायाह नबी ने तुम्हारे बारे में क्या खूब नबूवत की है, ये कौम अपने होंठों से तो मेरा एहतराम करती है लेकिन उसका दिल मुझसे दूर है। वो मेरी परस्तिश करते तो हैं लेकिन बेफायदा, क्योंकि वो सिर्फ इंसान ही के अहकाम सिखाते हैं, इंसान को क्या कुछ नापाक कर देता है। फिर ईसा ने हुजूम को अपने पास बुलाकर कहा, सब मेरी बात सुनो और इसे समझने की कोशिश करो, कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान के मुंह में दाखिल होकर उसे नापाक कर सके, बल्कि जो कुछ इंसान के मुंह से निकलता है वही उसे नापाक करता है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर पूछा, क्या आपको मालूम है कि फरीसी ये बात सुनकर नाराज़ हुए हैं। उसने जवाब दिया, जो भी पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया उसे जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह दिखाने वाले हैं, अगर एक अंधा दूसरे अंधे की रहनुमाई करे तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। पतरस बोल उठा, इस तमसील का मतलब हमें बताएं। ईसा ने कहा, क्या तुम अभी तक इतने ना समझो, क्या तुम नहीं समझ सकते कि जो कुछ इंसान के मुंह में दाखिल होता है वो उसके मेदे में जाता है और वहाँ से निकल कर जाए ज़रूरत में, लेकिन जो कुछ इंसान के मुंह से निकलता है वो दिल से आता है, वही इंसान को नापाक करता है। दिल ही से बुरे ख्यालात, कत्ल व गारत, जनाकारी, हरामकारी, चोरी, झूठी गवाही और बहुतान निकलते हैं, यही कुछ इंसान को नापाक कर देता है, लेकिन हाथ धोए बगैर खाना खाने से वो नापाक नहीं होता। फिर ईसा गलील से रवाना होकर शुमाल में सूर और सैदा के इलाके में आया। इस इलाके की एक कनानी खातून उसके पास आकर चिल्लाने लगी, खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम करें, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। लेकिन ईसा ने जवाब में एक लफ्ज़ भी न कहा। इस पर उसके शागिर्द उसके पास आकर उससे गुजारिश करने लगे, उसे फारिग कर दें क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चीखती चिल्लाती है। ईसा ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ इसराइल की खोई ही भेड़ों के पास भेजा गया है। औरत उसके पास आकर मुंह के बल झुक गई और कहा, खुदावंद मेरी मदद करें। उसने उसे बताया, ये मुनासिब नहीं कि बच्चों से खाना लेकर कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। उसने जवाब दिया, जी खुदावंद, लेकिन कुत्ते भी वो टुकड़े खाते हैं जो उनके मालिक की मेज़ पर से फर्श पर गिर जाते हैं। ईसा ने कहा, अय औरत, तेरा ईमान बड़ा है, तेरी दरख्वास्त पूरी हो जाए। उसी लम्हे औरत की बेटी को शिफा मिल गई। फिर ईसा वहाँ से रवाना होकर गलील की झील के किनारे पहुँच गया। वहाँ वो पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। लोगों की बड़ी तादाद उसके पास आई। वो अपने लंगड़े, अंधे, मफलूज, गूंगे और कई और किस्म के मरीज भी साथ ले आए। उन्होंने उन्हें ईसा के सामने रखा तो उसने उन्हें शिफा दी। हुजूम हैरत ज़दा हो गया क्योंकि गूंगे बोल रहे थे, अपाहिजों के आज़ा बहाल हो गए, लंगड़े चलने और अंधे देखने लगे थे। ये देखकर भीड़ ने इसराइल के खुदा की तमजीद की। फिर ईसा ने अपने शागिर्दों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है, इन्हें मेरे साथ ठहरे 3 दिन हो गए हैं और इनके पास खाने की कोई चीज़ नहीं, लेकिन मैं इन्हें इस भूख की हालत में रुखसत नहीं कर सकता, ऐसा ना हो कि वो रास्ते में थक कर चूर हो जाएं। उसके शागिर्दों ने जवाब दिया, इस वीरान इलाके में कहाँ से इतना खाना मिल सकेगा कि ये लोग खाकर सैर हो जाएं? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने जवाब दिया, 7 और चंद एक छोटी मछलियां। ईसा ने हुजूम को ज़मीन पर बैठने को कहा, फिर 7 रोटियों और मछलियों को लेकर उसने शुक्रगुजारी की दुआ की और उन्हें तोड़ तोड़ कर अपने शागिर्दों को तकसीम करने के लिए दे दिया। सबने जी भरकर खाया। बाद में जब खाने के बचे हुए टुकड़े जमा किए गए तो 7 बड़े टोकरे भरे। खवातीन और बच्चों के अलावा खाने वाले 4,000 मर्द थे। फिर ईसा लोगों को रुखसत करके कश्ती पर सवार हुआ और मगदन के इलाके में चला गया।